नमस्कार भारत, तारीख 21 अप्रैल दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन का ऐलान, परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर तुरंत रोक, ट्रंप ने किया स्वागत। आज रायबरेली में होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सोनिया गांधी के गढ़ में कांग्रेस को घेरने का इरादा, लेकिन क्या बनेगी बात?
उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यप्रणाली के नाते लोग नाराज हैं, उस समय सोनिया गांधी को हराने की स्ट्रेटजी पे काम करना बहुत समझदारी नहीं है।
और विवेचना में राजेश प्रियदर्शी बताएंगे भारत ने किस तरह बदली गणित की दुनिया। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अब और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया से मिल रही खबरों में ऐसा दावा किया गया है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहप के मुताबिक उत्तर कोरिया आज से परमाणु मिसाइलों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोक देगा। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसे उत्तर कोरिया और दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर बताया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूस, राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान और विकीलीक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पार्टी ने इन पर अमेरिका में साल 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए खुशी खुशी रूस की मदद लेना स्वीकार किया। वॉशिंगटन पोस्ट के राष्ट्रीय सुरक्षा संवाददाता एलेन नाकाशिमा ने बीबीसी से कहा, डेमोक्रेट्स का मकसद अभियुक्तों को अपराध बोध स्वीकार कराना है। वे चाहते हैं कि रूसी सरकार, विकीलीक्स और ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़ी टीम ये माने कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के कंप्यूटर्स हैक किए थे और उनकी गोपनीय जानकारियां चुराई थी। ये थी रिपोर्टर एलेन नाकाशिमा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वीडन के मशहूर डीजे अवीची का कल ओमान में निधन हो गया। वो 28 साल के थे। अवीची ने मडोना, कोल्ड प्ले जैसे बैंड्स के साथ काम किया था। उनकी प्रतिनिधि डायना बेरोन ने एक बयान में टिम बर्गलिंग, जिन्हें अवीची भी कहा जाता था, के निधन की जानकारी दी। अमेरिका में गन कंट्रोल की मांग को लेकर हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। कोलंबाइन हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना के 19 साल पूरे होने के मौके पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद अमेरिका के लोग बंदूक नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में रैली को संबोधित करते हुए एक स्कूली छात्रा एमी लू ने कहा कि वो अभी भी डर के साये में जी रही हैं। उन्होंने कहा,
I am terrified of going to school every day. Because I'm reminded of the terror that rang through these hallways on Valentine's Day.
मैं हर दिन स्कूल जाने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे वैलेंटाइन डे पर हुई गोलीबारी याद आती है। मैं सोने से डरती हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपनी आँखों को बंद करती हूँ तो मुझे उसका चेहरा दिखता है। जब भी मैं पुलिस सायरन और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती हूँ तो डर जाती हूँ। ये थे छात्रा एमी लू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज रायबरेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और तमाम दूसरे नेता भी रैली में शामिल होंगे। रायबरेली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सऊदी अरब में 40 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार सिनेमाघर में कोई फिल्म दिखाई गई है। फिल्म ब्लैक पैंथर के साथ ये शुरुआत हुई है। इस फिल्म के सभी टिकट ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में बिक गए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उत्तर पश्चिम प्रांत में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। शून्य से अनंत और अनंत से शून्य, ये कहानी है गणित की जिसकी पीठ पर टिका है दुनिया का तमाम विज्ञान। मगर कैसे, आज इसकी विवेचना होगी। गणित राजनीति में भी दिखता है और इसी गणित को साधने आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रायबरेली में होंगे। जैसा आप जानते हैं, रायबरेली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का गढ़ है। गणित में समीकरणों की बहुत अहमियत होती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें तो समीकरण उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच भी बदलते नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के हवाले से कुछ घंटे पहले खबर आई कि उन्होंने सभी परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके कुछ देर बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अच्छी खबर बताते हुए इसका स्वागत किया। पूरी रिपोर्ट दिनेश उप्रेती से।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अब और परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहप ने उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के हवाले से कहा है कि 21 अप्रैल यानी आज से उत्तर कोरिया परमाणु मिसाइलों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोक देगा। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पिछले साल नवंबर में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया था और ये भी कहा था कि ये मिसाइल अमरीका तक मार करने में सक्षम है। इस परीक्षण की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कड़ी निंदा की थी और कहा था कि उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुट राय का अपमान किया है। परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाने के कारण उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं। दरअसल कोरियाई प्रायद्वीप में विंटर ओलंपिक्स के दौरान दोनों कोरियाई देशों के बीच गर्माहट आनी शुरू हुई थी और अब तो किम जोंग और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन हॉटलाइन भी स्थापित की गई है। दोनों नेताओं का अगले हफ्ते मिलने का कार्यक्रम भी है। ये बैठक एक दशक में पहली बार होने जा रही अंतर कोरियाई सम्मेलन के सिलसिले में होगी। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने उच्च स्तरीय सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि अमरीकी खुफिया एजेंसी के निदेशक माइक पोम्पियो ईस्टर के मौके पर उत्तर कोरिया के गुप्त दौरे पर गए थे। पोम्पियो के दौरे का मकसद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच सीधी बातचीत का रास्ता साफ करना था। किम की जून में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की भी संभावना है। अगर ये मुलाकात होती है तो उत्तर कोरिया के किसी नेता की ये पदस्थ अमरीकी राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात होगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। इरम, स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में जो उत्तर कोरिया से सुबह आई और उसके बाद ट्रंप ने स्वागत किया, तो सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा है क्या? जी इरम, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ।
जी तो मैं इस खबर की बात कर रहा था जो उत्तर कोरिया से सुबह सुबह आई, जहां ये ऐलान किया गया किम जोंग उनकी तरफ से कि उन्होंने सारे मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कुछ घंटे बाद इसका स्वागत भी कर दिया, तो क्या लग रहा है, सब स्क्रिप्टेड है?
जी देखिए, बिल्कुल, हम ये पहले जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो जून में जो है मिल रहे हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ, और उन पे बहुत क्रिटिसिज्म तनकीद की जा रही थी कि अगर कोई समरात या फ्रूट्स नहीं मिलते हैं तो क्यों ट्रंप इस तरह खुलेआम उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन आज हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि वो 21 अप्रैल से अपने मिसाइल टेस्ट जो है वो साइट बंद कर रहा है, और ये वो डिमांड है, मुतालबा है, जो कि दुनिया कब से नॉर्थ कोरिया से कर रही थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसको मानने को तैयार नहीं था। साउथ कोरिया का भी ये कहना है कि वो भी, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है इस न्यूज को, और वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक में ही मीटिंग है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की, और उसके लिए बेहतर एक माहौल बनाया जा रहा है, और फिर लग यही रहा है कि जून में, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि वो मिलने जा रहे हैं नॉर्थ कोरियन लीडर से, तो अब ये मुलाकात, ये समिट जो है लगता है कि होगी।
जी इरम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों ही नेता, ट्रंप की बात करें आप या किम जोंग उन के बारे में बात करें, दोनों के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़े तीखी बयानबाजी कर रहे थे, इसके बाद अचानक से ये ड्रामेटिक चेंज आया है। क्या लग रहा है आगे, क्या बात इसी दिशा में बढ़ेगी या दोनों अपनी अपनी मजबूरियों के चलते अपना रुख बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया का तो हमने देखा कि हमेशा से स्टांस बदलता रहा है, लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आए। अमेरिका में अब ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, जैसा कि आपने खुद कहा कि कुछ नहीं बताया जा सकता कि वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि आपने कहा, कि एक दूसरे को ट्विटर पे धमकाते रहे, डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के लीडर को ये बात भी करते रहे कि किसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स का या न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा बटन है, इस तरह की बात हुई जिससे जो है उनके इंटेलेक्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो मसले को समझ नहीं रहे। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एबिलिटी को जो है बगैर समझे जो है इसको डील कर रहे हैं इस मामले के साथ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका के जो सीनियर एहलकार हैं माइक पोम्पियो, वो भी गए, उनकी मुलाकात हुई नॉर्थ कोरियन लीडर से, और अब जो है इस हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट बजाहिर लग रहा है कि हो रही है,
फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया इरम पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का चीन का 4 दिन का दौरा आज से शुरू हो रहा है। वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगी और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगी। बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ता से बात की और पूछा कि भारतीय विदेश मंत्री इस दौरे में किन मुद्दों पर चर्चा कर सकती हैं।
सुषमा स्वराज बीजिंग में आ रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करना चाहती है, और इसके बाद जून महीने में प्रधानमंत्री भी चीन आएंगे और एसईओ के मिनिस्ट्रियल लेवल या प्राइम मिनिस्टर लेवल मीटिंग को अटेंड करेंगे। और सवाल ये आता है कि एसईओ मीटिंग में क्या बातें उठाई जाएगी। मोदी साहब ने लंदन में ऑलरेडी पहला इंडिकेशन दे दिया ये कहते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म को हार्बर कर रही है, टेररिस्टों को बचा रही है। एसईओ का मेन फोकस यह है कि टेररिज्म से कैसे निपटा जाए, लेकिन एसईओ का एक और कानून है, वो यह है कि आप जॉइंटली सारे रीजन की चर्चा कर सकती हो, दो देशों के बीच में मतभेद को नहीं चर्चा कर सकती। लेकिन सवाल यह आता है कि पहली मीटिंग में भारत क्या पाकिस्तान के टेररिज्म वाला मुद्दा उठाएगा, और उठाएगा तो पाकिस्तान कैसे जवाब देगा और चीन का क्या रवैया होगा। तो आज ये सवाल फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय में पूछा गया, उसके जवाब में विदेश मंत्रालय के अफसर ने ये कहा कि हमें सब मिलकर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस पाकिस्तान का है टेररिज्म की लड़ाई में, पाकिस्तान की निंदा न करके उसे सपोर्ट करना चाहिए। अब चीन के लिए पाकिस्तान बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन एसईओ की मीटिंग चीन में हो रही है, चीन सबसे बड़ा देश है, उसमें चीन नहीं चाहती है कि मतभेद में एसईओ टूट जाए, इसलिए वो सुषमा स्वराज को समझाने की कोशिश करेंगे वांगी, और हो सकता है प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से भी सुषमा स्वराज की मुलाकात हो।
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी घोषित करने के लिए भारत कई बार कोशिशें कर चुका है, लेकिन चीन ने बार बार इसको वीटो किया है।
चीन की सबसे बड़ी दुनिया में बदनामी तो इसी बात को लेकर है कि जहां जहां टेररिस्ट है उन कंट्रीज के साथ उनकी सबसे ज्यादा दोस्ती है, तो चीन को भी काउंटर अगर करना है तो पाकिस्तान का मुद्दा रेस करना होगा।
बीते साल डोकला में चीन और भारत की सेनाएं आसपास थी और करीब 2 महीने से अधिक वक्त तक ये तनाव की स्थिति ऐसे ही बरकरार रही। क्या इस विवाद पर भी इस बैठक में कुछ बात होगी?
एसईओ की मीटिंग में एक और मंत्री आ रहे हैं, वो है हमारे रक्षा मंत्री
निर्मला सीतारमन,
और बहुत लोग भारत में ये नहीं जानते हैं कि एक औरत रक्षा मंत्री होने के कारण चीन में उनकी बहुत इज्जत है, खास करके दोकलाम के टाइम पे उन्होंने लीडरशिप लिया था इसके लिए, लेकिन उनका भी रोल बहुत ही क्रूशियल रहेगा, खास करके एससीओ में जब वो रशिया के साथ डील करेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात कर रही थी मानसी दास। अगली खबर भारत से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज रायबरेली में होंगे, उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई दूसरे नेता भी होंगे। खबर है कि इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को गढ़ में घेरने की बीजेपी की रणनीति सफल होगी? सुनिए समीर आत्मज मिश्र की यह रिपोर्ट।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कुछ उसी तरीके से रायबरेली में दस्तक दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कुछ महीने पहले अमेठी में दी थी। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम दूसरे नेता भी आ रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और उनकी पार्टी के ही कुछ नेता अब कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने पूरी पार्टी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी को भी नहीं बख्शा। दिनेश सिंह ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी की वजह से उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला।
साथियों, तमाम दलीलों के बावजूद उन्होंने मना कर दिया और मैं निराश होकर के चला आया। 2 घंटे बाद मुझे फिर से प्रियंका गांधी के घर पर तलब किया जाता है और कहा जाता है कि मैं आपको टिकट एक शर्त पर दूंगी कि आप अपने विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दीजिए, इस शर्त पर मैं आपके भाई को टिकट दूंगी।
दिनेश सिंह इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं। उनके बगावती तेवरों के चलते कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल उन्हें निकाल दिया है। पार्टी प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि उनके जाने से कांग्रेस और मजबूत होगी।
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि दिनेश सिंह क्या थे और आज किस पोजीशन में है और अगर है तो उसके पीछे किसका हाथ। इनके जाने से आप सबसे ज्यादा देखेंगे कि रायबरेली के लोगों में खुशी होगी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पिछले दिनों जब लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के मकसद से आए थे तो उसी वक्त इस बात की बड़ी चर्चा थी कि दिनेश सिंह सपरिवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के दलित सांसदों के बगावती तेवर और कानून व्यवस्था पर हर दिन राज्य सरकार पर उठ रही उंगली के चलते वो दिन भर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों नेताओं के साथ बैठक में ही व्यस्त रहे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के एक एमएलसी, एक विधायक और एक जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत वाले परिवार को अमित शाह लखनऊ की बजाय रायबरेली में ही पार्टी में शामिल कराना चाहते थे ताकि उसके जरिए वो एक बड़ा संदेश दे सकें। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र इसे बहुत सूझबूझ वाली रणनीति नहीं मानते।
दिनेश सिंह को इतना बड़ा नाम नहीं है कि उसके लिए अमित शाह जैसा बड़ा लीडर जाकर के वहां पर जाए और जाकर के उनको ज्वाइन कराए। जब पूरी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यप्रणाली के नाते सरकार से लोग नाराज हैं तो उस समय सोनिया गांधी को हराने की स्ट्रेटजी कोई बहुत उस पर काम करना बहुत समझदारी नहीं है।
हालांकि दिनेश सिंह के बीजेपी में सपरिवार शामिल होने की आहट मिलते ही पार्टी में विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके और उनके भाइयों के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। लेकिन सवाल ये है कि जब पार्टी का मुखिया ही उन्हें सपरिवार अपना लेगा तो कार्यकर्ताओं के आगे दूसरा कौन सा रास्ता बचेगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग की विपक्ष की मांग कितनी जायज, इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 21 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
इंडिया के पास आज बोलने का मौका है और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। बताने के लिए मौजूद हैं दिनेश उप्रेती और उनके साथ हैं अभिमन्यु साहा।
जी वासल जी, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को महाभियोग का नोटिस दिया है। ये खबर लगभग सभी हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की सुर्खी है।
हमारे इंडिया बोल का विषय भी दिनेश जी आज यही है।
दैनिक भास्कर की हेडलाइन है महाभययोग। प्रस्ताव की पहली लाइन लिखी गई है, यह दिन न देखना पड़ता तो अच्छा था। इंडियन एक्सप्रेस ने महाभियोग पर कांग्रेस के भीतर मतभेदों की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार बीरप्पा मोली ने पहले भी महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं।
कई जगह से चर्चा ये भी आ रही है कि मनमोहन सिंह को जानबूझ के छोड़ दिया गया है क्योंकि उनके कार्यकाल में ही दीपक मिश्रा बने थे सीजेआई।
नरोदा पाटिया मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी के गुजरात हाईकोर्ट से बरी होने की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर
जी है। अब अभिमन्यु से जान लेते हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं।
बसल एक खबर है जो ध्यान खींच रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। अखबार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह प्रकाशित किया है कि केंद्रीय कैबिनेट 2 अध्यादेश के मसौदे पर आज विचार करेगा। पहला अध्यादेश 12 साल से कम उम्र के बच्चे के रेप में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दिए जाने के बारे में है और दूसरा अध्यादेश वैसे संदिग्ध आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर है जो सुनवाई की डर से देश छोड़कर भाग गए हैं।
जी दिनेश जी,
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर के निधन की खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।
हिंदी गुजरात पट्टी में आईपीएल देखने वालों की संख्या 20% घटी है। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक पिछले सीजन के मुकाबले इन इलाकों में करीब 3.5 करोड़ दर्शक कम हुए हैं।
जी बहुत शुक्रिया दिनेश जी और अभिमन्यु, आपका भी शुक्रिया। और अब विवेचना। जैसा हमने शुरू में बताया था, आज है गणित की कहानी, वो गणित जिस पर पूरी दुनिया का विज्ञान टिका है और उसके सिरे भारतीय आध्यात्म में भी तलाशे जाते हैं। गणित के विकास में दुनिया के तमाम देशों की हिस्सेदारी रही है, लेकिन भारत का योगदान सबसे अहम है। कैसे, ये बता रहे हैं हमारे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी।
विवेचना। शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथ गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है। विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी इसी गणित पर टिकी हैं। ये जो आप सुन रहे हैं, ये है 16 बीट्स यानी मात्राओं वाला 3 ताल। एक ज्यादा या एक कम, ये संगीत से शोर में बदल जाएगा। महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह की पैदाइश से कई 100 साल पहले खोज लिया था। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों से चलते हैं। आकार और अनुपात को समझे बिना किसी तरह की कोई रचना संभव ही नहीं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपांजी तक कई जीव जंतु 5 से 7 तक गिन सकते हैं। इंसान ने पहले पहल कहां और कब गिनना शुरू किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेबिलोनिया कहा जाता था, वहां और मिस्र में मिलते हैं, जहां लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्तों पर लिखते थे। इस धरती पर इंसान की बनाई हुई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। अब से तकरीबन 5,000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाजा देते हैं कि ज्यामिति या ज्योमेट्री का विकास भी काफी पहले शुरू हो गया था। जाने माने गणितज्ञ मार्कस दू सौते समझाते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते थे।
For me, the most impressive thing about the pyramids is the mathematical brilliance that went into making them.
मेरी नज़र में पिरामिड की सबसे खास बात उसे बनाए जाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल है। ये प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के फॉर्मूले का व्यवहारिक रूप है। प्राचीन मिस्र में एक परफेक्ट समकोण या राइट एंगल बनाने के लिए बराबर दूरी पर गांठ लगी रस्सी का इस्तेमाल नापने के लिए किया जाता था। इसका फॉर्मूला था, पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी 4 गांठ लंबी और तीसरी 5 गांठ लंबी। 5,000 साल पहले पत्थर, रस्सी, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बने चमत्कारी पिरामिड।
मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई या बित्ते से नाप तोल कर रहे थे। कई पत्थर, कहीं बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी या रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में, जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी, बेबीलोन वाले भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। मगर कहानी का ट्विस्ट ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वह 10 और 10 को भी समझता था, सैकड़े को भी, लेकिन उसे लिखा पहली बार भारत ने, उसे एक अंक के तौर पर भारत ने देखा। मार्कस दू सौते बताते हैं,
The Indians transformed zero from a mere placeholder.
भारत ने शून्य को पूरा नया रूप दे दिया। ये पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर था, मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, शून्य से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंक को लिखना, उन्हें जोड़ना घटाना अचानक बहुत आसान हो गया और गणित के पहिए को मानो इंजन मिल गया।
शून्य का विचार भारत के लिए सहज स्वाभाविक था। उसकी जड़ें हिंदू दर्शन में पहले से मौजूद थीं। मार्कस कहते हैं,
In the religions of India, the universe was born out of nothingness.
भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाता है। जब जीरो को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया तो उसके लिए नाम पहले से हिंदू दर्शन में मौजूद था, शून्य यानी कुछ भी नहीं।
7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का जो तरीका दिया वो आज भी चलन में है और पूरी दुनिया में स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वो ये कि एक में शून्य जोड़ने पर एक ही रहेगा, एक में से शून्य घटाने पर भी एक ही रहेगा, शून्य से गुना करने पर शून्य ही रहेगा। लेकिन शून्य से जुड़ा दूसरा चमत्कार भी भारत में ही हुआ, ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद। ब्रह्मगुप्त सब कुछ बता गए थे मगर एक बात रह गई थी, शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होगा। एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है जिसका जिक्र किए बिना यह कहानी पूरी नहीं हो सकती। उनका नाम था माधव। माधव ने यह साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या किसी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। यानी गौर से सुनिए, शून्य और एक के बीच भी एक अनंत छिपा है, ये बताया माधव ने। गणित जिनका विषय नहीं है और इन जटिल विचारों से ऊब रहे हैं उनके लिए एक जरूरी जानकारी, गणित के सबसे जटिल सवाल पाई का मान क्या है, इसका भी जवाब दिया भारत ने। मार्कस,
छठी सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 है। इसके आधार पर उन्होंने धरती की परिधि को नाप दिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो लगभग सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इसका पूरी तरह सही उत्तर दिया 15वीं सदी में माधव ने। माधव ने इसके लिए अनंत का सहारा लिया। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता। पाई दरअसल किसी भी वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात है। जहां कहीं मोड़ या घुमाव आता है उसे समझने के लिए पाई की जरूरत पड़ती है।
अब देखिए, बीज गणित की तो बात ही नहीं हुई इतनी देर में, जो अरबों की देन है, अल जबरा। क्या करें, समय ही नहीं मिला, समय भी गणित है। ये बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनट में, एक मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी फिर कभी समय मिलने पर।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अब और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहप के मुताबिक उत्तर कोरिया आज से परमाणु मिसाइलों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोक देगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूस राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान और विकिलीक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। स्वीडन के मशहूर डीजे अविची का कल ओमान में निधन हो गया। वो 28 साल के थे। अविची ने मडोना, कोल्ड प्ले जैसे बैंड्स के साथ काम किया था। अमेरिका में गन कंट्रोल की मांग को लेकर हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज रायबरेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। सऊदी अरब में 40 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार सिनेमाघर में कोई फिल्म दिखाई गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की अभिमन्यु कुमार साहा ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।